अयांश के मुंह से तबाह नाम सुन आरवी मुस्कुरा दी। क्या तबाह, सब कुछ तो छीन बैठे, अभी तक मन न भरा आपका, और कितना तबाह करेंगे मिस्टर मेहरा। ये सुन अयांश भी हंस दिया। कमाल है ना, बर्बाद हो रही हो मेरे हाथों, फिर भी तेवर उफ। एनीवे, ये एप्पल देख रही हो, ये हो तुम और ये चाकू मैं। जब चाकू एप्पल पर चलता है तो पता है क्या होता है? इतना कहते ही अयांश ने फट से एप्पल के बीच में चाकू दे मारा, जिससे ऊपर का हिस्सा कटकर दूर जा गिरा। ये देख हार्वी की आंखें फैल गईं और उसके कदम पीछे की तरफ लड़खड़ा गए। यही अंजाम होगा मुझसे टकराने का, कहते हुए अयांश ने चाकू टेबल पर फेंक दिया और हाथ में बचा आधा एप्पल आरवी को दिखाते हुए बोला, खाओगी वाइफी? चलो रहने दो, मैं ही खा लेता हूँ। तुम तो मूड देखकर खाती हो, जो मैं भी अभी तो है नहीं। बाइट लेते हुए, आपको क्या लगता है आप ऐसी हरकत कर मुझ में अपना पूरा खौफ भर देंगे मिस्टर मेहरा? लगता है मैं तो ऐसा ही करूँगा, तुम बस देखती जाओ। जितना एप्पल से चाकू दूर रहेगा बचा रहेगा, घर पास आया तो कट जाएगा। समझ रही हो ना जो कहना चाह रहा हूँ? मुस्कुराते हुए, आपका एग्जाम्पल भी समझ गई और आपकी मंशा भी, दैट्स गुड। बाय द वे, आज मुझसे पहले उठ गई, आई लाइक इट। और नहा भी ली, कपड़े भी चेंज कर लिए, क्या बात है वैसे? ये मन से किया है या मेरे डर से कि जल्दी उठ जाती हूँ नहीं तो मेरा पति मुझे लेटे लेटे स्नान करा देगा? कपड़े चेंज कर लेती हूँ नहीं तो मेरा पति खुद चेंज करने चला आएगा, भौंय उठाते हुए। मानना पड़ेगा, इतना असर हो भी क्यों ना, आई एम योर डेविल हस्बैंड। एप्पल खाते हुए, हो गया आपका? इतना कह आरवी मुड़कर खिड़की की ओर जाने लगी कि तभी अयांश ने उसकी कलाई पकड़ उसे अपनी ओर खींच लिया। जब मैं बात कर रहा हूँ या पास आता हूँ, मुझसे दूर भागने की, मुंह मोड़ने की कोशिश मत किया करो। एप्पल का आखिरी बाइट अपने मुंह में डालते हुए, छोड़िए मेरा हाथ, ना तो आपकी बातें सुनने लायक हैं और ना ही आपकी शक्ल देखने लायक, आरवी ने अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा। अयांश आरवी की कलाई मरोड़ते हुए बोला, फिर भी सुनना और देखना पड़ेगा, चू चू चू, अफसोस जताते हुए। बाय द वे, मेरे पसंद किए कपड़ों में अच्छी लग रही हो, ये पिंक कलर का सूट जच रहा है तुम पर, आरवी की ओर देखते हुए। मजबूरी में पहनना पड़ा, वरना मैं आपका दिया अपने शरीर को कुछ टच भी ना होने दूं। ये तो आप जबरदस्ती पास आते हैं, छूते हैं, मन तो करता है उसी वक्त आपका खून कर दूं, अयांश की ओर घूरते हुए आरवी बोली। विधवा हो जाओगी और उम्र भर जेल में चक्की पिसोगी फिर? वो मंजूर है, कम से कम इस कैद खुटन से वो जेल अच्छी तो होगी, यकीनन वहां का जेलदार भी अच्छा होगा, आप जितना खूंखार नहीं। रियली? एनीवे, मेरी दी चीज से याद आया, मेरा पहनाया मंगलसूत्र और मेरे नाम का सिंदूर कहाँ है? ना तो गले में मंगलसूत्र है, गले की ओर देखते हुए, और ना ही मांग में सिंदूर, आरवी की मांग की ओर देखते हुए। ये सुन आरवी कुछ ना बोली, बस अयांश की ओर देखती रही। एक पल अयांश उसे देख रहा था, दूसरे ही पल आरवी की दूसरी कलाई भी पकड़ उसे अपने करीब करते हुए गुस्से से बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे डाला मंगलसूत्र तोड़ने की? ये सुनते ही आरवी समझ गई कि अयांश को पता चल चुका है कि मंगलसूत्र उसने तोड़ दिया। दोनों एक दूसरे की ओर देख रहे थे, तभी राधे वहां आ गया और दरवाजे पर खड़ा बोला, बाबा ये पार्सल आया है, यहाँ रख दो। आरवी को वैसे ही अपने करीब कर पकड़े अयांश ने बिना राधे की ओर देखे कहा, हालांकि आरवी खुद को छुड़ाने की कोशिश में कसमसा रही थी। राधे ने पार्सल टेबल पर रखा और वहां से चला गया। पक्का अब फिर इन्होंने अयांश बाबा की बात न मानी। सच कहते हैं मादिक, ये लड़की बहुत जिद्दी है, बहुत। जानती हो इसमें क्या है? अयांश ने पार्सल की ओर इशारा कर कहा। ये सुन आरवी ने टेबल पर रखे पार्सल की ओर देखा, तभी अयांश ने उसे छोड़ दिया। खोलो इसे। आरवी एक नजर अयांश पर डालती है और फिर पार्सल पर, तभी अयांश फिर बोला, सुना नहीं, खोलो इसे, एक ही बात बार बार दोहराऊं जरूरी तो नहीं? क्या है इसमें, खुद देख लो, सरप्राइज है एक तुम्हारे लिए, आई होप यू लाइक इट माई वाइफी। मुस्कुराते हुए, जल्दी खोलो। तभी आरवी ने पार्सल खोला। जैसे ही पार्सल खोल आरवी ने देखा, उसे फट से अयांश की ओर देखा, पसंद आया। पार्सल में ढेर सारे मंगलसूत्र और सिंदूर की डिब्बी थी। तभी अयांश पीछे से आरवी को पकड़ उसे कंधे पर चेहरा टिकाते बोला, देख रही हो, अब तुम जितने मंगलसूत्र तोड़ोगी उतने ही मैं लेकर आऊंगा, चाहो तो ये सब तोड़ देना, मैं और ले आऊंगा, पर अपने नाम का मंगलसूत्र तुम्हारे गले से नहीं उतरने दूंगा। चलो इनमें से पहनो, मुझे मेरी वाइफ का खाली गला अच्छा नहीं लगता। नहीं पहनूंगी, आरवी ने अयांश से खुद को छुड़ाते हुए कहा, पर अयांश की पकड़ हमेशा की तरह मजबूत थी। ये तो होने से रहा, सोच लो अगर तुम ना पहनोगी तो फिर मैं खुद पहनाऊंगा, मैं फिर उतार दूंगी, मैं फिर पहना दूंगा, कब तक करेंगे? हमेशा? पॉसिबल नहीं, अयांश मेहरा के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। अब सुनो, क्योंकि बहसबाजी का तो कोई असर नहीं होने वाला है, आखिरकार तुम्हें मेरी माननी ही पड़ती है, तो अच्छा है पहले ही मान लिया करो, वरना मैं अपनी पर आता हूँ तो मनवा कर ही रहता हूँ। सो अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो इनमें से एक मंगलसूत्र उठाओ और पहनो, उसे अपने गले से उतरने ना दो और ना ही मेरे नाम का सिंदूर अपनी मांग से मिटने दो, और दूसरा ऑप्शन, तुम ऐसा ना करोगी तो मैं करूंगा, क्योंकि ना यहाँ मंगलसूत्र की कमी है और ना ही सिंदूर की, और ये काम करने के लिए अयांश मेहरा अकेला ही काफी है। ये आप सही नहीं कर रहे हैं, जब आप इन सबको मानते ही नहीं तो फिर क्यों, क्या मतलब है ये सब करने का?
तभी अयांश ने आरवी को अपनी तरफ घुमा लिया और एकटत आरवी की ओर देख बोला, अब मानने को जी चाहता है। ये सुन आरवी हैरानी से उसकी ओर देखती है, तभी दूसरे ही पल अपना टोन चेंज कर बोला, मतलब तो होगा ना, अब बात मुझसे जो जुड़ी है। सुना है इन सबसे पति की उम्र जुड़ी होती है, और पति कौन? मैं। मांग में सिंदूर सजाने से पति की लंबी उम्र होती है, तो मुझे भी लंबी उम्र चाहिए तुम्हारे दर्द देने के लिए। वाह, क्या बात कही है। अच्छा फिर तो जो कुमारे रहते हैं वो तो जल्द मर जाते होंगे ना। ये चीजें विश्वास पर टिकी होती हैं, तब मायने रखती हैं मिस्टर मेहरा, और ना आपको इन पर विश्वास है और ना ही ये शादी मेरे लिए मायने रखती है, और ये बात हम दोनों जानते हैं। पर आपकी सोच कितनी घटिया है और आपके इरादे, छी। ये सुनते ही अयांश का रवैया चेंज हो गया। उसने गुस्से में आकर आरवी की कलाई उसकी पीठ से लगा दी। दर्द की वजह से आरवी ने अपनी आंखें भींच ली। तभी अयांश ने सिंदूर की डिब्बी उठाई और उसे फट से आरवी के सिर पर डाल दी। सिर पर कुछ गिरने का एहसास होते ही आरवी फट से आंखें खोलती है। उसके चेहरे और कपड़ों पर सिंदूर गिरा था। अयांश की इस हरकत से वो गुस्से से भर गई, पर चाहकर भी कुछ न कर पाई। तभी अयांश ने एक मंगलसूत्र उठाकर वो भी जबरदस्ती आरवी के गले में पहना दिया और उसे बेड की तरफ धकेल दिया, जिससे वो बेड पर ओढ़े मुंह जा गिरी। आरवी नम आंखों से अयांश की ओर देखती है। अयांश ने आरवी को अंगुली दिखाते हुए कहा, मेरे इरादे छी है ना, तो तुम भी कोई दूध की धुली नहीं हो। मैं जो कर रहा हूँ हक से, शादी की है मैंने तुमसे और तुम पर मेरा पूरा हक है, अंडरस्टैंड? और हाँ, अभी मैंने जो किया है फिर से कर सकता हूँ, मजबूर मत करना मेरे खिलाफ जाकर, वरना तकलीफ तुम्हें ही होगी। सोच लेना अच्छे से, अभी जो मैंने किया है उसकी नौबत ना आए। अयांश मेहरा मांग भी भरना जानता है और मंगलसूत्र डालना भी। यू बेटर अंडरस्टैंड। तीन बार चुटकी बजाकर अयांश वहां से चला गया।
आरवी गुस्से से चीख कर रह जाती है और बेड से पिलो उठाकर जमीन में फेंकते हुए बोली, शादी शादी शादी, बड़ी हक की बातें करते हैं ना आप। वेट, आज बताते हैं हम आपको, हमारे साथ जो होना है वो तो होना ही है, पर आपको भी तो पता चले, टक्कर तो आरवी चतुर्वेदी से आपने भी ली है। ना मेरी हिम्मत टूटेगी और ना ही जबान बंद होगी, इस सब से चिढ़ होती है ना आपको। होने दो, हम भी अब यही करेंगे, कर लेना गुस्सा। आपको लगता है आपसे जीतना मुश्किल है, तो हम इतनी जल्दी हार मानने वालों में भी नहीं है मिस्टर मेहरा। सुकून मुझे नहीं तो चैन से आपको भी नहीं रहने दूंगी। अब आपकी बारी परेशान होने की। अयांश अपने रूम में था, तभी राधे ने डोर नॉक किया। अयांश बाबा? हाँ बोलो। वो मालिक ने कहा है कि आज वो आपके साथ नाश्ता करेंगे। ये सुनते ही टेबल से फाइल उठाते अयांश ने राधे की ओर देखा। दादू से कहो नाश्ता कर ले, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं लंच उनके साथ कर लूंगा। अयांश बाबा, कल रात भी मालिक ने ठीक से खाना नहीं खाया था और उनका मन है बहुत। कितने दिन हो गए, तीन वक्त तो क्या, आपने एक वक्त भी ठीक से उनके साथ खाना न खाया। परसों भी थोड़ा सा खाकर आप उठ चले आए और ना ही बात की बैठकर, राधे ने धीरे धीरे से बोलते हुए कहा। ये सुनते ही अयांश को एहसास हुआ कि वो जो कह रहा है सही कह रहा है, जो हो रहा है उसकी वजह से वो दादू पर तो ध्यान ही नहीं दे पा रहा है और ना ही टाइम। तभी अयांश ने हाथ में पकड़ी फाइल टेबल पर फेंक दी। जाओ ब्रेकफास्ट लगाओ, और हाँ मैं अभी घर पर हूँ, दोपहर के बाद ऑफिस जाऊंगा, दादू के साथ लंच भी लूंगा और उनके साथ टाइम भी बिताऊंगा, और हाँ दादू से कहना डिनर भी उनके ही साथ लूंगा आज। ये सुनते ही राधे मुस्कुरा दिया और बोला, हम जाकर मालिक को बताते हैं, उनकी खुशी और भूख दोनों बढ़ जाएगी। राधे वहाँ से चला गया। तभी अयांश की नज़र दीवार पर लगी दादू के साथ उसकी तस्वीर पर पड़ी। वो उसके पास गया और उस पर हाथ फेरते बोला, एम सॉरी दादू, जो सक्षम ने बिगाड़ा है उसे संभालने के चक्कर में टाइम लग जाता है, आपको तो बता भी नहीं सकता क्या हुआ है हमारे साथ, और बचा टाइम ये आरवी ले जाती है, इसके चक्कर में आपके लिए टाइम ही नहीं बचता, इसे ही सबक सिखाने में लगा रहता हूँ। आई एम रियली सॉरी, बट अब आपको इग्नोर नहीं करूंगा, अनजाने में भी नहीं, आपको टाइम दूंगा। तभी अयांश ने अपनी कोट की जेब से फोन निकाला और विनीत को कॉल लगाया। हाँ अयांश बोलो। विनीत ने फोन उठाते ही कहा, इतना जल्दी में कहाँ जा रहे हो? अयांश ने विनीत से पूछा। वो एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, एक क्लाइंट से मिलना है, फिर एक साइड होकर ऑफिस आता हूँ, विनीत बोला। स्टॉप द कार, अयांश चिल्लाया। क्या हुआ? विनीत ने बिना गाड़ी रोके बोला। आई सेड स्टॉप। जैसे ही अयांश ने फिर कहा तो विनीत ने गाड़ी के ब्रेक लगा दिए। तभी अयांश उसे डांटते हुए बोला, आर यू मैड? ऑफ कोर्स यू आर मैड, बड़ी जल्दी है ना तुम्हें सब सही करने की और क्लाइंट से मिलने पहुंचने की, जो यूं फुल स्पीड में गाड़ी चलाकर जा रहे हो। वो मैं जस्ट शट अप, अगर ऐसे ही ड्राइव करनी है और ऐसे ही काम करना है तो छोड़ दो काम, कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद कर लूंगा। आई एम सॉरी, मैं स्पीड कम रखूंगा, प्रॉमिस। आई एम सॉरी यार, रिलैक्स। बाय द वे कॉल किस लिए किया? विनीत ने अयांश को शांत करने के लिए बात बदलते हुए पूछा। ओ हाँ, तुम्हारे चक्कर में वो तो रही गई, वो मैं ये कह रहा था कि मैं लंच टाइम के बाद ऑफिस आऊंगा, तब तक तुम ऑफिस देख लेना, बट तुम तो बाहर हो। हाँ बट मैं चला जाऊंगा, और तब तक तरुण है ना, वो देख लेंगे, वैसे कोई खास वजह लंच के बाद आने की? कहीं भाभी के साथ टाइम बिताने का तो प्लान नहीं? विनीत ने मुस्कुराते हुए पूछा। ये सुनते ही अयांश की भौहें सिकुड़ गई। लगता है तुम एक्सीडेंट से नहीं मेरे हाथ से मरोगे, मैं यहाँ भाभी के लिए नहीं अपने दादू के लिए घर रुक रहा हूँ, तुम दफा हो जाओ एंड ध्यान से जाना। इतना कहे अयांश ने फोन काट दिया और फोन बेड पर फेंक खुद रूम से बाहर चला गया। आगे पीछे भाभी भाभी ही दिखती है इसको, मरेगा एक दिन, बड़बड़ाते हुए क्रमशः।